वेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय,
वेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय का स्वरूप। मुनि महाराज छठे सप्तम गुणस्थान में जब रहते हैं तो वहाँ पर प्रवृत्ति भी होती है और ध्यान में बैठ जाते हैं तो निवृत्ति भी मानी जाती है। निवृत्ति यानी ध्यान अवस्था, प्रवृत्ति यानी ध्यान रहित अवस्था। आहार लेना, प्रवचन देना, विहार करना, देख देख कर चलना इत्यादि जो ये शारीरिक प्रवृत्ति है, मन वचन काय इसमें सक्रिय रहते हैं। रत्नत्रय वही रहता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ग्रहण किया है। वो सामान्य रूप से रत्नत्रय तो रत्नत्रय है, पर वह रत्नत्रय जब प्रवृत्ति के काल में रहता है उसको हम व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। और जब ध्यान में विराजमान हो जाते हैं मुनि महाराज तो मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है, तो वहाँ पर भी रत्नत्रय होता है। प्रवृत्ति रुक जाने के कारण उस रत्नत्रय का नाम निश्चय रत्नत्रय पड़ जाता है। व्यवहार रत्नत्रय ही निश्चय रत्नत्रय के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ध्यान समय के रत्नत्रय को निश्चय रत्नत्रय और ध्यान रहित अवस्था में प्रवृत्ति के काल में रहने वाले रत्नत्रय को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं।
अगला प्रश्न है महाराज जी, आगम और अध्यात्म इसका स्वरूप बताइए।
आगम और अध्यात्म, आगम का अर्थ होता है भगवान के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है वहाँ से जो आता है उसको आगम कहते हैं। मूल वाणी आगम है और उस वाणी के आधार से जो हम आत्म कल्याण करने के लिए जिस विषय को अपने जीवन में उतार लेते हैं वह विषय है अध्यात्म। अध्यात्म विषय के द्वारा आत्मा का चिंतन, मनन, ध्यान, अध्ययन अच्छी तरह से होता है। अध्यात्म आगम से भगवान के मुखारविंद से जो भी आया वो सब कुछ आगम कहलाता है। और उस आगम में कर्म सिद्धांत भी होता है और अध्यात्म भी होता है। उसको हम जब अलग अलग करते हैं विषय की अपेक्षा से तो ये कह सकते हैं अध्यात्म का विषय अलग होने पर अध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं और आगम के विषय को अलग करने पर आगम ग्रंथ कहलाते हैं। आगम मूल होता है,
सिद्धांत और न्याय
है,
सिद्धांत और न्याय,
सिद्धांत ये सब कुछ सिद्धांत ही है,
उसमें न्याय भी आएगा ना महाराज,
न्याय भी आएगा। न्याय अध्यात्म की कोटि में आता है। आगम को यथार्थ रूप में विचार करने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है। तो कर्म सिद्धांत के जो ग्रंथ होते हैं ये सिद्धांत ग्रंथ आगम ग्रंथ कहलाते हैं। और समय सार है, द्रव्य संग्रह है जिसमें 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय इत्यादि का वर्णन होता है। उन ग्रंथों का नाम अध्यात्म ग्रंथ है। इनको द्रव्याण योग के ग्रंथ भी कहते हैं। हाँ,
संविधान की उपमा दे सकते हैं क्या? आगम को संविधान की उपमा दे सकते हैं क्या?
आगम को संविधान, हाँ ठीक है ना, सृष्टि में जो प्रकृति से विद्यमान सिद्धांत हैं वो जैसे हैं वैसा ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं, तो सृष्टि के ये संविधान हैं, नियम हैं। हाँ, अध्यात्म आगम ग्रंथों के आधार से ही उत्पन्न होता है। अध्यात्म जहाँ आता है जीवों के परिणामों का विषय उपलब्ध होता है। अधि यानि निकट, आत्मा, आत्म यानि आत्मा, अधि आत्मा, अध्यात्म, अधि यानि निकट, आत्मा के निकट आने के लिए जो विषय हमको कारण बनता है उस विषय का नाम अध्यात्म विषय। ग्रंथों की अपेक्षा से यदि हम कहें कि प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह और परमात्म प्रकाश इत्यादि, ये जो द्रव्याण योग के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को अध्यात्म ग्रंथ बोलते हैं।
इसमें भावना और ध्यान भी आ गया। हाँ, अध्यात्म में भावना और ध्यान आता है ना।
भावना, भावना मतलब ये ध्यान, ध्यान संबंधित जो ग्रंथ हैं वो भावनात्मक होते हैं। जैसे ज्ञानार्णव एक ग्रंथ है, वो भावना ग्रंथ है। जो ध्यान विषय का प्रतिपादन करता है वो भावना ग्रंथ है। आत्म भावना भाने के लिए वो सहायक है।
अगला प्रश्न है महाराज जी, अनेकांत और स्वाद्वाद इसका स्वरूप।
अनेकांत और
स्वाद्वाद,
शाद्वाद,
शाद्वाद।
अच्छा, अनेकांत उस वस्तु का नाम है जो संसार में छह द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त होता है। गुण कितने हैं ऐसा यदि हम पूछते हैं तो अनंत ऐसा कहते हैं। पर्याय गुण यदि अनंत हैं तो पर्याय भी अनंत कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्यायात्मक जो वस्तु है, पदार्थ है या द्रव्य है, उसके भीतर के गुणों को व्यक्त करना ये अनेकांत के माध्यम से ही संभव है। वस्तु अनेकांतात्मक होती है, पदार्थ अनेकांतात्मक होता है, अर्थात अनंत गुणधरात्मक, गुणधर्मात्मक होता है। वस्तु अनंत गुण वाला है, यही उसकी अनेकांतता है। उसको, उन गुणों को व्यक्त करने की जो शैली होती है, अनेकांतात्मक वस्तु के संबंध में कथन करने के लिए कथन की जो पद्धति है, उस कथन पद्धति को शाद्वाद पद्धति कहते हैं। शाद्वाद जहाँ आ जाता है वहाँ पर नए भी लागू होते हैं, नए समझने के और एक्स्ट्रा माध्यम हैं। शाद्वाद कथन शैली सात प्रकार से होती है। शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, शाद वक्तव्य, शाद शाद अवक्तव्य, शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य और शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सात कथन की पद्धतियां हैं। ये कथन पद्धति वस्तु स्वरूप को पूर्णतः विश्लेषित करने के लिए माध्यम बनाया जाता है। शाद्वाद अगर न हो तो अनेकात्मक वस्तु का प्रतिपादन करना असंभव हो जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने वस्तु को जानने के लिए, वस्तु का स्वरूप तो समझाया, वस्तु कैसा है तो ये अनेकांतात्मक है। अब इसको कैसे समझें तो शाद्वाद की शैली से समझो, उसको नयों की अपेक्षा से भी समझो, शाद्वाद कथन की शैली से नय को लगा लगा करके समझो। तो समझने के लिए साधन दिया है शाद्वाद पद्धति, तो अनेकांत को समझने के लिए शाद्वाद माध्यम हुआ। यही अंतर है मुख्य रूप से अनेकांत में और शाद्वाद में।
अगला प्रश्न है महाराज जी, आहार विशुद्धि कैसी होनी चाहिए? आहार विशुद्धि कैसी होनी चाहिए? आहार विशुद्धि,
आहार विशुद्धि यानी
कैसी होनी चाहिए? आहार विशुद्धि के बारे में,
आहार शुद्धि के विशुद्धि
विशुद्धि लिखा है उन्होंने,
नहीं आहार शुद्धि कैसा होना चाहिए, आहार शुद्धि कैसा होना चाहिए, और आहार शुद्ध हो तो विशुद्धि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। विशुद्धि परिणाम को कहते हैं और शुद्धि आहार को कहते हैं। आहार शुद्धि कैसा हो, किसका प्रश्न है ये? आहार शुद्धि,
नहीं दर्शन प्रतिमेबद्दल काल सांगितलेत ना, रोज रोज तेच कर, नाही काल संध्याकाळी झाले दर्शन प्रतिमा, आता आहार विशुद्धीचा तुमचाच प्रश्न आहे ना?
नाही उसके मतलब प्रश्न किसका है उसको डिटेल पूछे तो हम बताते।
तुम्ही सांगा काय सांगा,
क्या पूछना चाहते हैं उसमें?
नमस्ते महाराज जी,
हाँ
दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताइए,
हाँ।
और आहार विशुद्धि
अच्छा, अच्छा।
शुद्धि कैसी होनी चाहिए?
हाँ अब समझ गए, अब इतना संक्षिप्त लिखा है तो हम कौन सा आहार शुद्धि कैसे क्या बोले। जो प्रतिमाधारी बनना चाहता है, आप बनना चाहते हैं क्या? लिया है प्रतिमा? नहीं लिया है, लेना है? अच्छा प्रतिमाधारी बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है संक्षिप्त में, संक्षिप्त में बताते हैं। देखो पहली प्रतिमा में 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना होता है। 25 दोष कौन कौन से हैं ये रत्नकरणक श्रावकाचार्य ग्रंथ में पढ़ के समझ लेना 25 दोष, और 25 दोषों को त्यागेंगे तो अपने जीवन में 25 गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दोष रहित सम्यक दर्शन का पालन ही दर्शन प्रतिमा है। इसको धारण करने वाला श्रावक इसके साथ में 7 व्यसनों का त्याग करता है और 8 मूल गुणों का पालन करता है। 7 व्यसन कौन कौन से हैं वो भी देख लो रत्नगण श्रावकाचार्य में पढ़ करके। संक्षिप्त में परिभाषा बता रहे हैं दर्शन प्रतिमा का, और 7 व्यसन का त्याग, 8 मूल गुणों का ग्रहण। 8 मूल गुण कौन कौन से, तो 5 अनुव्रत, स्थूल अहिंसानुव्रत, स्थूल सत्यानुव्रत, स्थूल अचौर्यानुव्रत, स्थूल कुशील त्याग ब्रह्मचर्यानुव्रत, स्थूल परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। ये दर्शन प्रतिमा को ग्रहण करने वाले के लिए पूर्व में ही इतनी भूमिका चाहिए। दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये कभी भी नहीं समझना कि नित्य देव दर्शन करना दर्शन प्रतिमा है, ये गलत है। आप दर्शन करो या न करो, कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार रहते हैं कहीं बाहर चले जाते हैं तो जिनेंद्र भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्रतिमा का दर्शन नहीं हो पाता, तो इससे क्या ये समझे कि दर्शन प्रतिमा जो लिया था वो खंडित हो गया? नहीं, 25 दोषों से रहित जिसमें 8 मद 8 शंकादि दोष 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इनको त्यागा जाता है, ये दर्शन प्रतिमा है। इस दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक को किसी दिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन ना भी हो जाए किसी परिस्थिति में तो उसको कोई दोष नहीं लगता। दर्शन करने का कोई संबंध दर्शन प्रतिमा के साथ नहीं है। सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए हमने ये प्रतिमा ली है और निर्दोष पालन करने हेतु लिया है। नरक में नारकी जीव रहते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं क्या? नहीं। देवदर्शन मिलता है क्या? नहीं मिलता। नारकी जीव भी 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व का पालन करता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए तो 25 दोषों से रहित रहता है, वहाँ पर कोई देव दर्शन नहीं मिलता। तो फिर सम्यक दर्शन कैसा रहेगा? तो दर्शन के साथ सम्यक्त्व का कोई संबंध नहीं है, ये समझ में आता है। भोग भूमियों में सम्यक दृष्टि रहते हैं, उपभोग भूमियों में सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं। इन भूमियों में कोई भी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, कृत्रिम चैतालय वगैरह नहीं होते। क्या होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो सम्यक्त्व का पालन वहाँ पर भी तिर्यंच जीव और मनुष्य जीव करते हैं। तो देव दर्शन के बिना सम्यक दर्शन का पालन कैसे होता है, ये प्रश्न उठता है। तो देव दर्शन इससे समझ में आता है कि देव दर्शन का संबंध सम्यक्त्व के साथ है ही नहीं। सम्यक्त्व के साथ 8 दोषों से रहित 8 गुणों का पालन करना, 8 मद दोष का त्याग करना, 6 अनायतन का त्याग करना और 3 मूर्ता का त्याग करना, ये क्या होता है इसको भी रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ करके समझ लेना। तो ये दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा ही यदि आप लेते हैं तो आपको शुद्ध भोजन करना भी आवश्यक माना गया, क्योंकि दर्शन प्रतिमा प्रतिमाओं की कोटि में है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक जो चौथे गुणस्थान वर्ती होता है उसके पास दर्शन प्रतिमा तो नहीं है, केवल सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, परंतु वह शुद्ध भोजन नहीं करता। पर दर्शन प्रतिमाधारी शुद्ध भोजन करना प्रारंभ करता है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा लेकर तीसरी प्रतिमा लेकर आगे धीरे धीरे उनको बढ़ना है, बढ़ने का लक्ष्य होता है। तो प्रथम सीढ़ी है प्रतिमाओं की दर्शन प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं को आचार्यों ने कहा प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थानवर्ती होता है। तो दूसरी प्रतिमा तो लिया नहीं और पहली प्रतिमा में केवल सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, तो इनको पंचम गुणस्थान कैसे हुआ? 12 अनुवृतों को धारण करने पर ही पंचम गुणस्थान होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पर दर्शन प्रतिमा को ग्रहण करने के बाद वो कैसे पंचम गुणस्थानवर्ती कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। पहली प्रतिमाधारी को पंचम गुणस्थानवर्ती कहना औपचारिक कथन ही समझना चाहिए, क्योंकि पहली प्रतिमा लेता है तो दूसरी प्रतिमा का अभ्यास नियम से स्टार्ट करता है। जैसे आप कर रहे हैं अभी, शुद्ध भोजन अगर कर रहे हैं और 2 बार सामायिक कर रहे हैं और 12 अनुवृतों का पालन अभ्यास के रूप में यदि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास दर्शन प्रतिमा है। और ये सब नहीं कर रहे हैं तो चौथे गुणस्थान में है। चौथे गुणस्थान वर्ती को दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करना नियम नहीं है। दर्शन प्रतिमाधारी को अभ्यास करने का नियम भी बन जाता है, क्योंकि आगे बढ़ने का लक्ष्य वाला ही अभ्यास करना जब प्रारंभ कर देता है तो वही चौथा गुणस्थान वर्ती अभ्यास शुरू करता है तो प्रतिमाओं की कोटि में आ जाता है वो। तो पंचम गुणस्थान होता है क्या? नहीं। अभ्यास के काल में कैसे होगा? विदाउट संकल्प कभी भी वृत्ति नहीं कहलाता। तो उपचार से कहें क्या? उपचार से कह सकते हैं, पंचम गुणस्थान की कोटि में वह भी है, उपचार से कहो। परंतु प्रत्यक्ष तभी हम कह सकते हैं जब वह 12 अनुवृतों के पालन के लिए संकल्पित होता है और आचरण प्रारंभ करता है, तब उनको पंचम गुणस्थान होता है। तो जहाँ पर आपका प्रश्न है कि आहार शुद्धि क्या है, तो आहार शुद्धि ये है, जब आप भोजन करेंगे तो भोजन को छान कर जीवाणु छोड़ त्रस जीवों को छोड़कर कुएं से या बरसात का पानी स्टॉक किया हो उस पानी से भोजन पका सकते हैं, या कहीं कुआं दूर हो दूर से पानी ला कर के आप 2-3-6 महीने तक के लिए भी स्टॉक कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। एक ही बार में 1,000-2,000 लीटर कहीं से पानी छान करके लाए और उसको घर में स्टॉक कर दिया और वो 3-4 महीने जितने महीने तक चल सके, उस पानी का उपयोग करते हुए भी आप दूसरी प्रतिमाधारी बन सकते हैं। बरसात का पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं टंकी में, और उस टंकी में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं फिर मोटे छन्ने कपड़े से छान करके उन जीवाणुओं को उसी में छोड़कर उससे भोजन पकाना छने हुए जल से, ये आहार की शुद्धि मानी जाती है। इतना ही नहीं, अब आटे की मर्यादा अलग अलग ऋतुओं के अपेक्षा से, अलग अलग मौसम की अपेक्षा से अलग अलग मर्यादा है, उसका एक चार्ट भी है, किसी से आपको मिल जाएगा, उस चार्ट के अनुसार चलेंगे तो दूसरी प्रतिमा का आप पालन कर सकते हैं। इस प्रकार पानी और खाद्य पदार्थ, इन दोनों को अहिंसक पद्धति से स्वीकार करते हुए भोजन करना, ये आहार शुद्धि है। इस आहार शुद्धि के पश्चात आपको और क्या करना है दूसरी प्रतिमा में, तो देखो 2 बार सामायिक तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 बार, समय मिले तो 3 बार भी कर लेना, नहीं मिला तो कम से कम 2 बार सामायिक करना चाहिए। कितने समय के लिए करना चाहिए, तो कम से कम 48 मिनट के लिए तो करना चाहिए, 48 मिनट सामायिक। और क्या करना,
उसका काल क्या है महाराज जी?
हैं,
उसका काल,
उसका काल
सामायिक का
48 मिनट बताए ना?
नहीं नहीं, सवेरे ऐसा समय।
अच्छा, समय प्रातः काल में 1 बार और सायंकाल में 1 बार, 2 बार सामायिक करना, यानी संधि काल में सामायिक कर सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो चिंतित नहीं होना, पर 2 बार तो सामायिक अवश्य करना। सामायिक करने का अर्थ क्या है, ये है कि हम परिग्रह के विकल्प को छोड़कर 48 मिनट तक, अभी सुबह कराया कि नहीं संकल्प के साथ कैसा सामायिक, उसी ढंग से उसी पद्धति से सामायिक 48 मिनट के लिए 2 बार करना। जितने समय के लिए त्याग रहता है परिग्रह का, वही काल सामायिक काल कहलाता है। ये हो गया सामायिक 2 बार। और क्या करना है, परिग्रह को, 10 परिग्रह हैं, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, वो कौन कौन से हैं, ये सम्यक ज्ञान संस्कार एक पुस्तक है, उस पुस्तक में 10 प्रकार के परिग्रहों का नाम करना आया है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धनधान, दासी, दास, ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह। इसमें से अंश मात्र में भी हम त्याग करते हैं तो हमारा अनुव्रत प्रारंभ होता है, अंश मात्र में भी त्याग करते हैं तो हमारा अनुव्रत प्रारंभ हो जाता है। 10 परिग्रह को एक देश त्याग करना, शुरुआत में अल्प मात्रा में त्याग होता है और त्याग करते करते त्याग की मात्रा बढ़ती भी जाती है। 11वीं प्रतिमा तक व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो केवल वस्त्र परिग्रह मात्र उनके पास रहता है और एक पात्र परिग्रह रहता है, ऐलक की अपेक्षा से वस्त्र और क्षुल्लक की अपेक्षा से वस्त्र और पात्र, 2 परिग्रह रहता है। तो इन 11 प्रतिमाओं की सीढ़ी पर हम परिग्रह को ही कम करते हुए चले जाते हैं, ये चारित्र की सीढ़ियाँ हैं, ये देशव्रत की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ने वाले श्रावक को नियम से पंचम गुणस्थान होता ही है।
प्रतिक्रमण भी करना चाहिए ना?
हाँ, अब हाँ, प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। पुस्तक मिला है क्या सबको, यहाँ पर रखे थे?
दे है पर्सन,
ये सबको मिला गया? हाँ ठीक है, इसमें 11 प्रतिमाओं का सबका प्रतिक्रमण आता है। आप जितने प्रतिमाधारी होते हैं उतने प्रतिमाओं का ही प्रतिक्रमण आपको करना है, सबका है इसमें 11 प्रतिमा। हाँ बहुत अच्छा है, ये संक्षिप्त में भी है। जितने मतलब 12 अनुव्रत जो होते हैं उनका प्रतिक्रमण करके, अगर दो प्रतिमा धारी है तो 12 अनुव्रतों का प्रतिक्रमण इसमें है, उतना करके आप सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। वीर भक्ति, 24 तीर्थंकर भक्ति और अंत में समाधि भक्ति, ये भक्ति करके प्रतिक्रमण पूर्ण करते हैं। तो नियम से 2 बार प्रतिक्रमण भी करना सुबह शाम, लगे दोषों का निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण करना। और क्या रहा महत्वपूर्ण, देखो 5 बातें हैं, शुद्ध भोजन करना, 2 बार सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, परिग्रह प्रमाण करना,
प्रोषद उपाय उनके लिए,
हाँ अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करना, ये 5 बातें भी कर लिया तो शेष बातें, स्वाध्याय तो है ही, अन्य टाइम में क्या करेंगे, स्वाध्याय ही तो करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, एलोपैथिक में भी 2 प्रकार के आते हैं, यानी एनिमल सोर्स वाले और केमिकल सोर्स वाले, अलग अलग औषधियाँ हैं। अब उसका परीक्षण तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, यदि औषधि शुद्ध है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं, अशुद्ध है उसमें प्राणी जनित कोई स्रोत है तो उन औषधियों से बचना आवश्यक है, परंतु परीक्षण जरूर करके लेना चाहिए।
केमिकल ये दोषपूर्ण है ना,
हाँ
केमिकल
सोर्स वाले भी औषधियाँ होती
हैं, दोष है ना उसमें,
नहीं नहीं दोष कैसे हैं, शुद्ध रहते हैं वो, केमिकल सोर्स वाली औषधियाँ शुद्ध रहती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी शुद्ध हैं, उसमें भी अशुद्ध औषधियाँ भी आती हैं
आयुर्वेद में भी,
हाँ आयुर्वेदिक में भी शुद्ध अशुद्ध दोनों हैं, मर्यादा से रहित भी होती हैं।
अगला प्रश्न है,
जैसा भी मतलब लेना ही पड़े तो शुद्ध वगैरह शुद्ध ले करके आप अपना व्रत पालन कर सकते हैं, औषधि लेने पर प्रायश्चित भी होता है, क्योंकि औषधि का इतना गारंटी तो हम ले नहीं सकते कैसा है कैसा नहीं है, तो इसके लिए प्रायश्चित का विधान है। ऐसा नहीं करना कि शरीर को रोग से ग्रसित होने के बाद भी आप जबरदस्ती उसको खींच रहे हैं और ठीक करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, शरीर को ठीक करना चाहिए जैसा भी बने, और अगर औषधि वगैरह में थोड़ी बहुत अशुद्धि भी है तो आपको प्रायश्चित ले करके स्थितिकरण कर लेना चाहिए।
आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या आप
सुनाई नहीं दे रहा है, एक माइक उधर दे दो, दो है ना माइक,
जीवाणु से जो दवाइयां बनती है वो शुद्ध है, जो जीवाणु से दवाइयां एलोपैथिक बनती है, कुछ दवाइयां एंटीबायोटिक वगैरह मानी जाती है क्या अशुद्ध मानी जाती है, जीवाणु से बनती है, जीवाणु बोले तो जैसा फंगस है या वायरस है या बैक्टीरिया है, जो मतलब जीवाणु है एकदम जो फंगाई बोलते हैं उनको हम, या वनस्पति है, या जो मतलब अपना जो समुद्र में ये मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको,
सेवाल बोलते
हैं, या वो जो ऐसा ये रहता है ना उसमें मोती मिलता है और ऊपर का शंख, हाँ शिपला जिंक,
किस औषधि में ऐसा होता है,
हाँ
किस औषधि
कैल्शियम वगैरह मिलता है, एंटीबायोटिक में भी मिलता है, तो इसको अपन शुद्ध बोले या अशुद्ध बोले,
उसमें त्रिस जीवों का घात होता है क्या, ये देखना है। रुको थोड़ा बहुत, त्रस जीवों का घात की संभावना उसमें है क्या, ये देखना है।
नहीं त्रस जीव की जैसे मतलब मैंने जो सिंपला बोला है, जैसे कैल्शियम उससे निकालते हैं उसमें तो कोई त्रस जीव नहीं है, लेकिन जो जो ऊपर का कवच, कवच आता है,
शीप शीप होता है,
हाँ शीप आता है ना, शीप जो कवच आता है तो वो तो एक्चुअल उसकी हड्डी मानी जाती है,
हाँ
हाँ, तो उससे वो बनता है। अभी तक तो हम उसको हड्डी मानते थे, अब वो एग्जैक्टली क्या है ये तो मुझे भी पता नहीं है, तो इसको कैसा अपन ये करें, क्या हम उसको और क्या जानकारी उससे
ऐसी औषधियाँ,
हाँ ऐसी
जिसमें सीप वगैरह भी डाला हो, सीप की सीप से बने हुई चीजें,
कैल्शियम वगैरह गोलियां,
उसमें कैल्शियम ज्यादा रहता है,
कैल्शियम कार्बोनेट करके गोली आती है,
हाँ।
और आजकल हरा की अभी का जो ईरा चल रहा है, अभी का जो मतलब माहौल चल रहा है उसमें 40 के बाद में क्या बच्चों में भी कैल्शियम की बहुत कमी है और विटामिन डी की कमी रहती है, और विटामिन जो रहता है तो विटामिन तो अपने को धूप से मिलती है, लेकिन हम लोग एसी में बैठते हैं तो हम उसको मतलब मिलने नहीं देते, इसलिए हमको कमी मात्रा में मिलती है, आप लोगों में उस पर ज़्यादा मात्रा में मिलती है, आपको डिफिशियंसी नहीं हो सकती लेकिन हमें डिफिशियंसी होती है। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इसमें से मेरा दावा है कि 50% लोग उसमें डिफिशियंसी होंगे, तो ऐसे लोगों को अपन कैल्शियम और विटामिन दे सकते क्या?
कैल्शियम की जो भी चीज़ें हैं तो उसी से चीज़ें, उसी से गोलियां वगैरह बनती हैं, चीज़ हाँ, बनती है,
औषधि बनती है, कुछ गोलियां उससे बनती है, कुछ उसमें प्योर भी बनती है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स है, जैसा अपन एक मिनट अपन वटाना लगाए मन तो, हाँ वटाना बोलते हैं ना, उसमें जो बीज आती है वटाना की,
वटाना
हाँ, जो हरी हरी जो हरी हरी जो ये रहती ना, एक मतलब
मटर,
मटर 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 उसकी जो
मटर बोलते,
हाँ मटर, तो उसमें जो बीज निकलती है उससे भी कैल्शियम निकलता है।
अच्छा,
अभी जो सोयाबीन आता है उससे कुछ कैल्शियम निकलता है, जो दूध दूध में जो है उसमें भी कैल्शियम निकलता है, तो कुछ दवाई ऐसी रहती कुछ दवाई वैसी रहती, तो क्या करना चाहिए?
तो वही उसको जिसमें शुद्धिकरण अपने को समझ में आता है, ये सब पता लगा करके उसमें जो शुद्ध है उसको ले सकते हैं।
अच्छा,
कैल्शियम की अपेक्षा से पता लगाना चाहिए और लेना चाहिए।
मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कुछ आयुर्वेदिक दवा और कुछ होम्योपैथिक दवा में भी मतलब एनिमल सोर्सेस की हो सकती है,
हो सकती है ना, एनिमल सोर्स वाले को तो
बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आयुर्वेदिक बहुत प्योर है, तो ऐसा नहीं है, वो
ऐसा नहीं है,
उनकी कम
आयुर्वेदिक में भी कई औषधियाँ अशुद्ध भी हैं, हाँ भस्म वगैरह होते हैं, सीप भस्म, शंख भस्म, श्रृंग भस्म, ये भस्म वगैरह, हाँ, तो अपने को पता लगा करके चर्चा करके पता लगाना चाहिए, फिर निर्णय करके कौन सी शुद्ध कोशिश लेना चाहिए। हाँ शंख, शंख शंख दो इंद्री है, शंख भस्म का मतलब वही शीप जैसे उसमें से कैल्शियम निकलता कहते हैं ना, उसको भी भस्म बना करके वो करते होंगे, अब वो चर्चा करनी पड़ेगी कैसा बनता है क्या बनता है। हाँ हड्डी का ही बता रहे, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान ये सब लेना न पड़े और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे सबसे अच्छा है। और प्रतिमा धारण यदि जीवन में यंग अवस्था में लेते हैं तो वृद्ध अवस्था में तो आपको बीमारी ऐसी आ नहीं सकती जिससे कि ये सब खाना पड़े वृद्ध अवस्था में जाने के बाद जीवन भर अशुद्ध आहार वगैरह कर लिया और शरीर को बिगाड़ दिया, और वृद्धावस्था में आप साधन करना चाहो तो ये कभी संभव नहीं होता, जल्दी से जल्दी प्रतिमाधारी बनना चाहिए, इसीलिए आहार ही औषधि हो जाती है, शुद्ध आहार रोज करेंगे तो रोग आएंगे ही नहीं है, और कदाचित आ जाए कोई ऐसा संदर्भ आ जाए तो एक आध बार आता है और कुछ करना पड़े तो आपको तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है महाराज जी, रेलवे और या एसटी में प्रतिक्रमण सामायिक कर सकते हैं?
रेलवे
और एसटी में प्रतिक्रमण सामायिक कर सकते हैं?
जो जीव मर रहे हैं मैं समता भाव रखता हूँ, गाड़ी जा रही है कोई भी जीव नीचे मर रहा हो तो समता भाव है नहीं करने की जरूरत ही नहीं, वहाँ आप पहुँचिए जहाँ पर पहुँचना है, एक दिन का सामायिक छूट भी गया है तो योग्य स्थान पर पहुंचने के बाद आप उसका डबल सामायिक करिए,
प्रतिक्रमण
गाड़ी में करना ठीक नहीं।
प्रतिक्रमण
क्या सामायिक करेंगे, विकल्प रहेगा कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और सामायिक कर रहा हूँ, सविकल्प रहेगा मन, निर्विकल्प हो ही नहीं सकेगा।
प्रतिक्रमण भी प्रतिक्रमण भी नहीं कर सकते,
प्रतिक्रमण भी कैसे करेंगे? आप वहीं जाओ जहाँ पर पहुँचना है और एक साथ करो। एक घंटे का सामायिक छूट गया है तो दो घंटा सामायिक कर लो।
जाप दे सकते, जाप दे सकते,
जाप दे सकते, जाप तो दे सकते। नमोकार मंत्र का उच्चारण करने में क्या है, हर समय में हर हालत में करना ही चाहिए ऐसा कहते हैं। हाँ आप सामायिक बैठे और एक घंटा गाड़ी रुकने वाली थी और वो नहीं रुकी, चार पाँच मिनट पहले ही जाने लगी तो ऐसा ऐसा होंगे। हाँ काय काय गुप्ती भी नहीं बनेंगे, ऐसे ऐसे हो रहे। गाड़ी में सामायिक करने की जरूरत ही नहीं, आप नमोकार मंत्र पढ़िए, चिंतन करिए, चल जाएगा, निर्विकल्प रहो, गाड़ी जाने दो और पहुंचने के बाद अच्छी तरह से कर लो, डबल सामायिक करो।
शंका विचार है ना,
मान लो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी वाले ने ब्रेक एकदम लगाया तो आप सामायिक में बैठे हैं, ऐसे अगले सीट पर टकराओगे ना, ये भी हो सकता है अपघात। अच्छे से पकड़ के बैठना चाहिए, सामायिक करेंगे तो आपका संकल्प रहता हम हिलेंगे नहीं, पर गाड़ी आपको हिला देगा और आप गिर भी सकते हैं सामायिक करते करते, तो ऐसा काम नहीं करना, अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही चलना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। हाँ इसलिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दोष लगता है। और आसन कौन सा लगाएंगे, खड़गासन से करेंगे कि पद्मासन से करेंगे? सीट पर पद्मासन से बैठने के लिए जगह कम रहती है ना, और ठीक से नहीं बैठेंगे तो गाड़ी वाले ने एकदम ब्रेक लगाया तो आप ऐसे गिर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा गिर गए कहीं लग गया, फिर कैल्शियम की गोली कहाँ से लाएंगे? तो ये ऐसा नहीं करना।
अगला प्रश्न है महाराज जी,
हाँ
सवेरे निर्माल्य का विषय हुआ था, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा।
निर्माल्य का विषय, निर्माल्य क्या क्या कहलाता है? राजवार्तिक में अकलंक देव ने कहा है और कुंदकुंद आचार्य ने भी कहीं इसी किसी ग्रंथ में कहा है, ध्यान नहीं है, ढूंढ सकते हैं उस साहित्य में। निर्माल्य क्या क्या है? पूजन किया हुआ द्रव्य जिसको हम चढ़ाते हैं, अक्षत है, खारिक है, बादाम है, श्रीफल है, ये चढ़ाने देव के लिए चढ़ाने के उपरांत ग्रहण करने योग्य नहीं रहते, अर्पित द्रव्य निर्माल्य कहलाता है, देव द्रव्य कहलाता है। ये एक ये, अब मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर के देखभाल के लिए, क्षेत्र निर्माण के लिए इत्यादि के उद्देश्य को लेकर के जो दान राशि आती है दाताओं से, वो दान राशि भी निर्माल्य है अगर ग्रहण करे तो, क्योंकि उसका ग्रहण करने से कार्य रुकता है, जिस उद्देश्य से दाता देता है वह कार्य हो नहीं पाएगा, और हो नहीं पाएगा तो वो दोष तो आएगा ही, विघ्न डाल दिया, उस द्रव्य को लेकर के हमने उसका सेवन कर लिया, उसको हमने अपने सांसारिक काम में ले लिया, तो भोगोपभोग वस्तु के रूप में अगर उसका ग्रहण हो गया तो निर्माल्य भक्षण का दोष अवश्य आता है। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से द्रव्य जो दिया जाता है ऐसे बस गाड़ियाँ निकालते हैं ना, उसकी रेट होती है और उसको दिया जाता है, उसमें से द्रव्य को बचा करके उसकी आजीविका बनाना या उसका सेवन करना, ये भी निर्माल की कोटी में आता है।
उनका व्यवसाय रहेगा ना महाराज, उनका व्यवसाय रहेगा ना
वो व्यवसाय तो है लेकिन ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है ना। हाँ देखो
वही कर रहे हैं, नहीं वो दोष है।
दाता जो यात्रिक है वो ये सोच करके देता है कि हमको तीर्थ यात्रा करा दो, ये सोच करके देता है वो। और आप जितना देता है वो सभी उसी उद्देश्य से देता है, ऐसा तो है नहीं। आप वह व्यवसाय करते हैं इसलिए आप पहले अपने व्यवसाय का इतना द्रव्य ले लो और बाकी द्रव्य से हमको यात्रा करा दो, ऐसा विभाजन तो करते नहीं हैं। बल्कि यात्रा के निमित्त से जितना द्रव्य दाता देता है उसी में से अधिक बचाव करने का प्रयास करता है, तो वो निर्माल की कोठी में आएगा।
कुछ तो मुनाफा लेगा ही नहीं मतलब।
इससे ये अच्छा है, अगर वो व्यवसाय करना हो तो ये अच्छा है कि दाताओं से पहले से ही बता देना चाहिए, मैं आपके द्रव्य में से कुछ भी ले नहीं सकता, तीर्थ यात्रा का जो आप राशि दे रहे हैं उसमें से मैं ले नहीं सकता, उसमें जितना खर्च होता है उतना खर्च तो आपके लिए हम करेंगे ही करेंगे, परंतु कराने वाले हम हैं तो हमारे लिए कमीशन दीजिए पहले से ही। हाँ ये व्यवसाय ठीक है, कमीशन के माध्यम से आप अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन दाता के दिए हुए द्रव्य में से बचाव करके, ज़्यादा बचाव करके उस लोभ में उस चक्कर में पड़ते हैं तो निर्माल भक्षण का दोष तो आएगा, तीर्थ यात्रा का द्रव्य को लिया नहीं जाता है। हाँ हाँ पूछो पूछो, डिटेल पूछो उसको।
क्योंकि मैं जो द्रव्य देते फल दूध के लिए पैसा या धान पन देते हैं,
क्यों देते हैं?
मुनि महाराज के लिए देते हैं। होता है महाराज ऐसे ही कहते हैं,
सभी लोग पूछो हम उत्तर देंगे।
तो पूरा खत्म ही
पहली
नहीं
बात ये है कि मुनि महाराज श्रावक से जो आहार ग्रहण करते हैं वो स्वयं का द्रव्य होता है या परक का द्रव्य होता है? जो दाता दान दे रहा है वह द्रव्य उसका ही होता है कि पर का भी होता है? स्वयं का ही होना चाहिए। पर का होने से दोष है क्या? नहीं, तो कौन सा दोष है? पर द्रव्य ग्रहण दोष है, पर द्रव्य ग्रहण दोष मूलाचार में आता है, पर द्रव्य ग्रहण दोष, यानी देने योग्य जो द्रव्य है वह पर द्रव्य ग्रहण दोष तो है ही, परंतु दाता जो दे रहा है वहां पर वो मुनियों को उद्देश्य बना करके दे रहा है, तो ये औद्देशिक दोष भी है। आपका उद्देश्य बना करके नहीं दे रहा है वो। हाँ नहीं, माइक दे दो।
मतलब अभी सभी लोग आपके शिविरों में बैठ रहे हैं, आपसे पढ़ रहे हैं, तो सब ज्ञानी बन गए, तो उन्होंने बीच का मार्ग ये निकाला कि आप स्वयं प्रतिमाधारी है, आपके लिए हम अपना द्रव्य दे रहे हैं, इसको आप यूज करो।
सुनो, प्रतिमाधारी भले ही हो,
हाँ।
प्रतिमाधारी क्या निर्धन है क्या?
बताया खूब बोलते महाराज जी बिना।
देखो प्रतिमाधारी कोई भी निर्धन नहीं होता, वो अपनी वस्तु से अपना भोजन पकाता है क्या? नहीं। क्या पर के ऊपर डिपेंड है? ग्रह त्यागी है, ग्रह त्यागी हो तो आप दूसरे का ले सकते हैं, ऐसा प्रतिमाधारी कोई होता है क्या दुनिया में? जो स्वयं का द्रव्य तो नहीं होता, और पर द्रव्य, पर का द्रव्य ले करके वह स्वयं खाता हो,
ऐसा तो नहीं होता,
ऐसा कोई नहीं होता। तो स्वयं के द्रव्य से ही आहार क्यों ना दिया जाए, ये विचार करना चाहिए।
समझ, इतने लोग टूट गए मार्जे इस कारण से,
हाँ,
हमने नहीं लिया इस कारण से, बिल्कुल सभी हमारे ऊपर नाराज रहते हैं कि आप नहीं लेते, ये नहीं, वो नहीं, अब कुछ समझ में नहीं आता मार्जे।
अच्छा,
हर जगह
नाराज होते हैं
बहुत
तो
बड़ी समस्या है महाराज जी।
नहीं, नाराज होते हैं तो नाराज होने दो, सही वस्तु तब समझ में आएगी जब अपन मूलाचार उनको पढ़ाएंगे। मूलाचार में क्या कहा है क्या नहीं कहा है, एक एक चीजें उसमें हैं। उद्गम दोष जो 16 है ना, उसका प्रकरण कम से कम 35 पेज का प्रकरण है उद्गम दोष का। तो इसको छपा करके सबके हाथ में दे दो, फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, उनको जो करना है कर रहे।
महाराज जी, महाराज जी, यही हाँ। प्रश्न पे उप प्रश्न है,
हाँ,
कि उनकी भावना तो आपको आहार देने की है,
हाँ,
भावना तो अच्छी है, फिर द्रव्य लेने में क्या हर्ज है?
नहीं देखो, जो द्रव्य दे करके भागना चाह रहा है,
नहीं, जैसा अजैनी है कोई,
हाँ,
अजैनी है, आपको देख के उसकी भावना भाती है।
देखिए देखिए, हाँ? भावना अलग बात है, परंतु मुनियों के उद्देश्य से जिस वस्तु को लाते हैं उन्हीं को देने की भावना रहती है, जो भी हो उन्हीं को दे, उन्हीं को, हाँ हो गया, क्या हो गया? उन्हीं को देने की भावना रहती है। तो कोई भी वस्तु, देखिए मूलाचार में यहाँ तक लिखा है कि आप दुकान भी जा रहे हों तो त्यागी को या महाव्रति मुनि को उद्देश्य बना करके कोई चीज लेने के लिए न जाएं, और फिर कोई भी व्यक्ति उस द्रव्य को मुनि का उद्देश्य बना करके ही दे रहा हो तो उद्दिष्ट भोजन है ना, वो उद्दिष्ट वस्तु हो गई।
नमोस्तु महाराज जी।
हाँ,
काल सर्पयोग या भविष्य, इसके लिए जय तत्व ज्ञान में क्या स्थान है?
क्या
काल सर्पयोग?
अरे ये विषयांतर मत हो जाओ, ये विषय क्लियर करना है अपने को।
नमस्तु महाराज जी।
हाँ।
महाराज जी, जो निर्माण
आहार संबंधित ही चर्चा करो,
जो
अच्छी तरह से निरसन हो जाए इस विषय का।
महाराज, जो द्रव्य हम मंदिर में चढ़ाते हैं,
हाँ, 10 ही मिनट है,
हाँ, जो ज्यादा
क्या क्या
जो द्रव्य हम मंदिर में चढ़ाते हैं जिसमें जैसे बादाम रहती है, नारियल रहता है, तो जो पुजारी वगैरह कहते हैं कि भाई आधे दाम में ले लो, फिर से भगवान को चढ़ाने के लिए काम आती, ये चलता है क्या महाराज? बहुत लोग ऐसे
है।
करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, जो मैं हिंगोली में रहती वहाँ भी वो लोग करते, हम तो नहीं करते, लेकिन हम बाकी लोगों को ये मालूम हो जाए, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रही हूँ महाराज।
देखो एक बात आपको बताते हैं, पूजन के निमित्त से आपने दुकान जा करके कोई वस्तु खरीद करके लाई तो उसमें से खाना नहीं चाहिए, अगर खाएंगे ना आपको दोष लगेगा, खाने के लिए अलग से लाना और पूजन के लिए जितना लगता है उसको अलग से ही लाना। सामुदायिक रूप से ला करके, देखो खाने के निमित्त से आप ला सकते हैं, खाने की वस्तु को उसमें से पूजन के लिए भी रख देते हैं निकाल करके तो अलग बात है, लेकिन पूजन के लिए लाया, पूजन के उद्देश्य से लाया और खाने के लिए उसमें से निकाल लिया, ये ठीक नहीं है।
मेरा प्रश्न ऐसा नहीं महाराज जी,
हाँ,
जो भगवान को हम चढ़ाते हैं बादाम बिदाम, तो वो जैसे नारियल रहता बादाम रहता, तो वो बाद में आधे कीमत में लोगों को बेचा जाता है पुजारी के पास से।
हाँ हाँ, ये विषय का ये प्रश्न पहले भी आया था, जैसे चढ़ावा द्रव्य जो होता है मंदिर का, कोई उसके उसको आधे कीमत में खरीद लिया और पूर्ण कीमत में बेच दिया, तो निर्माल्य का व्यवसाय जैन लोग नहीं करते, ये भी ध्यान में रखना है, निर्माल्य बेचकर उसका द्रव्य उससे व्यवसाय नहीं बनाते, क्योंकि वह देव द्रव्य है, ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए।
चढ़ाया हुआ निर्माल्य खरीद कर फिर से चढ़ाया जाता है क्या भगवान को?
खरीदना ही नहीं चाहिए, ये व्यवसाय करना ही नहीं चाहिए, पहली बात ये है, फिर चढ़ाने का बात और आधी कीमत या पूर्ण कीमत ये बात अलग ही है, निर्माल्य को खरीदना नहीं चाहिए और बेचना भी नहीं चाहिए।
महाराज जी, इसका एक और उप प्रश्न है,
हाँ,
कि अपन ने खाने के लिए सब ला लिया है द्रव्य, लेकिन पूजा साहित्य के लिए उसको यूज कर सकते हैं क्या?
कौन सा द्रव्य?
मतलब आप खाने के लिए आहार के लिए लाया है लेकिन पूजा के लिए कम पड़ता है, तो उल्टी प्रोसीजर, मतलब जैसा इधर से उधर नहीं जा सकते तो उधर से इधर आ सकते क्या?
अभी वही बताया हमने, आपने खाने के उद्देश्य से बहुत सारे द्रव्य चावल इत्यादि खरीद के लाए, उसको पूजा के रूप में उपयोग में ला सकते हैं क्या? नहीं, तो ला सकते हैं, परंतु पूजा के उद्देश्य ही यदि खरीदा हो तो खाने के काम में उसको नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें भावात्मक संकल्प हो जाता है कि ये पूजा द्रव्य है। संकल्प होने मात्र से वह द्रव्य खाने के लिए लायक नहीं रहा, इस प्रकार, यानी अल्टर अपोजिट सोचना, उसको एक योग्य है और एक अयोग्य है। हाँ, अब वो शेष बात, पहली बात अच्छी तरह से समझ लो क्या है। मुनियों को हम दान देते हैं, अतिथि संविभाग करते। अतिथि संविभाग क्या होता है देखिए, ध्यान से सुने सभी। अतिथि संविभाग यानी स्वयं के लिए जो भोजन पकता है रोज, हर रोज पकता है घर में, उसमें से कुछ भाग अतिथि को देना, ये अतिथि संविभाग है। अतिथि के उद्देश्य कोई द्रव्य देता है तो वो भी औद्देशिक में भी आएगा और परद्रव्य ग्रहण का भी दोष आएगा, परद्रव्य ग्रहण का भी दोष आएगा और औद्देशिक भी होगा। वो यहाँ तक कहा है कि आपके घर में नए नए बर्तन हैं, चम्मच है, कटोरी है, ग्लास है, लाए हैं, उसमें ये संकल्प करना कि पहले इस नए बर्तन में हम मुनि का आहार कराएंगे, फिर बाद में है इसका उपयोग हम खाने पीने के लिए यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ऐसा संकल्प भी औद्देशिक दोष की कोटि में आता है। बर्तन आदि भी, पहला इस घर में हम मुनि का आहार कराएंगे, फिर बाद में इस घर में गृह प्रवेश करके बाद में हम संसार चलाएंगे, ये भी दोष है। हाँ, और फिर कोई आहार पदार्थ चौके में आकर के कोई भी दे रहा हो, वो दाता का पदार्थ तो आप ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह दाता मुनि के उद्देश्य ही ला रहा है और दे रहा है, उसकी सद्भावना भावना बहुत है, भावना की कीमत जरूर है, लेकिन भावना सदोष हो तो स्वीकार करेंगे क्या? श्रद्धा की कीमत है, भावना की कीमत है, लेकिन भावना को आंखें नहीं हैं, भावना के लिए कोई विधि नहीं है, तो उस भावना का सम्मान करेंगे क्या? दोष आ रहा हो तो भावना तो हो लेकिन भावना निर्दोष हो। निर्दोष विधि क्या है? फिर भावना भी रहे, श्रद्धा भी रहे, देने के भाव भी रहे, लेकिन अपने लिए जो भोजन स्वयं के लिए पका है उस वस्तु को देने का नाम अतिथि संविभाग है और वही दान के योग्य है। स्वयं के लिए पका हुआ द्रव्य ही दान के योग्य होता है। उद्देश्यपूर्वक खरीदा हुआ, लाया हुआ, दिया हुआ, ये द्रव्य साधु को चलता ही नहीं, ऐसा मूलाचार बताता है। ये विषय 35 पेज का है, अगर उसको डीप में चर्चा करेंगे तो कितनी सारी गलतियां निकलेंगी मालूम है ना? बहुत गलतियां निकलेंगी अपनी चर्या में, दाता की चर्या में, दोष ही दोष हैं।
महाराज जी, आहार कुड़ा दोष इतु,
एक दाता ऐसा हो, कोई शास्त्र दान देने वाला, मूलाचार का यह जो प्रकरण है 16 उद्गम दोषों का, उतना मात्र अच्छी अच्छे ढंग से प्रकाशन कराएं और सभी दाताओं को बांटे तो अध्ययन करके वो अपने आचार विचारों को सुधार सकता है, ये होना चाहिए, सब लोगों को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए वो। हाँ, क्या
आहार कुड़ावरी दोष जरी तंद्र नहीं भक्तिपूर्वक ना जरी आहार महाराजरी हाक रहे अंदर दोष ही तेन
नहीं। ये सभी बातें मूलाचार से बाह्य हैं, भक्ति से देना, श्रद्धा से देना, ये लो लो तुम डाल दो अतिथि के हाथ में, ये मेरा द्रव्य श्रद्धा से दे रहा हूँ, भक्ति से दे रहा हूँ, ये भक्ति स्वीकार ही नहीं मूलाचार के लिए। नहीं, वो द्रव्य जो भी होना है वो खुद का होना चाहिए। देखो, अपने खुद के लिए बना हुआ होना चाहिए, खुद के द्वारा निर्मित होना चाहिए। वो कोई भी चीज़ हो, स्वयं के लिए लाए हो तो देना, अतिथि के उद्देश्य तो लाना ही नहीं है। ये ध्यान रखो, पहले मूलभूत बात तो ये है, अतिथि के उद्देश्य लाना नहीं, स्वयं के लिए उद्देश्य जो कुछ भी लाया गया है उस विषय को, उस वस्तु को देना, ये दान के योग्य वस्तु है। और ये उत्कृष्ट बात है कि दाता स्वयं के हाथ से ही दें। देखो, ये भी देख लो, स्वयं के हाथ से देने में निर्दोषता है, क्योंकि इस वस्तु को देने के लिए आप नवधा भक्ति करते हैं, करते कि नहीं करते? नवधा भक्ति पूर्वक ही वस्तु का दान देना चाहिए, उसके बिना तो देना नहीं चाहिए। अब किसी दूसरे के लिए आप अपनी वस्तु को दे के चले गए, क्योंकि हम डाल नहीं सकते इसलिए, तो उस वस्तु का नवधा भक्ति दूसरा करेगा, और वस्तु अपनी दूसरी दाता का है, ये चलेगा क्या?
यानी दूसरे के चौके में जाकर महाराज जी को दूसरे का द्रव्य देकर आहार हम नहीं दे सकते,
दे नहीं सकते,
दे नहीं सकते। हाँ। और प्रतिमाधारी एक दूसरे को हमारे घर में जो भी चीज बनाया है वस्तु,
हाँ,
हम आपस में एक दूसरे में दे सकते हैं क्या?
आपस में एक दूसरे को, यानी मध्यम पात्र दान?
हाँ, ऐसे। हाँ,
मध्यम सुपात्र दान।
सुपात्र दान,
देखो मध्यम सुपात्र की बात अलग है।
नहीं, हम एक दूसरे से दे,
एक मिनट वही उसी का उत्तर बता रहे हैं हम। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी चुल्लक, ऐलक और आरिका, ये ग्रह त्यागी हैं, इनके लिए उद्दिष्ट त्याग है, इनके लिए तो उद्देश्य पूर्वक नहीं दे सकते, ये प्रतिमाधारी एक्स्ट्रा हैं, ये अलग, इनको छोड़ो, इनको तो उद्दिष्ट आहार दे ही नहीं सकते, तीन को, चुल्लक ऐलक और आरिका। शेष प्रतिमाधारी को आप उद्देश्य पूर्वक ही आहार बनाकर, उनके उद्देश्य बनाकर निमंत्रण दे करके भी भोजन करा सकते हैं, प्रतिमाधारी को आप निमंत्रण दे करके भी भोजन करा सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता, मुनि को ही निमंत्रण देते हैं और मुनि के लिए ही पकाते हैं, जो जिनको करना चाहिए उनको तो करते नहीं, हाँ पुण्य ज़्यादा लग रहा है वहाँ और दोष ही ज़्यादा लग रहा है उल्टा।
महाराज जी,
हाँ, हाँ, तो क्यों दे रहा है हमारे लिए? यहाँ पका हुआ कम है क्या? नहीं, स्वयं आप अपने चौके में अपने भोजन निर्माण अपने लिए जितना लगता है वो तैयार किया है, और दूसरा व्यक्ति दे रहा है तो आप स्वीकार क्यों करेंगे? नहीं करना चाहिए स्वीकार, अपना भोजन अपन खाएंगे और अपने भोजन में से अतिथि को भी समीभाग करेंगे। अतिथि कहीं भी आसपास में हो सकते हैं, अतिथि के हाथ में डालकर भोजन करना ये आपका स्वयं का कर्तव्य है। दूसरे के दिया हुआ आहार उनको दे करके आएंगे तो अतिथि को कितना दोष लगेगा और आपको भी लग रहा है।
महाराज जी, अपने घर में पकाया हुआ भोजन,
हाँ,
अगर अपने यहाँ अपन दूसरे के चौके में वो द्रव्य अगर लेके जाए तो वो मुनि महाराज को दे सकते हैं क्या?
दे सकते हैं, सात घरों से आया, मूलाचार में आया है, आचिन और अनाचिन दोष, ऐसे दो दोष हैं, उसमें से आचिन तो निर्दोष माना जाता है, अनाचिन निर्दोष नहीं है। अनाचिन का मतलब सात घरों का जो देने योग्य द्रव्य बताया है, सात घरों से आया हुआ द्रव्य दे सकते हैं। उसका विधान क्यों आया? इसलिए आया, किसी के यहाँ मुनि महाराज पहुँच जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उस घर में भरपूर भोजन हो, एक ही व्यक्ति हो तो एक का ही भोजन रहेगा, दूसरा घर भी ऐसा हो सकता है, उस घर में भी एक ही व्यक्ति है, इस घर में भी व्यक्ति एक ही है, और मुनि के लिए तो पकाना दोष है, तो व्यक्ति अपने लिए जितना लगता है उतना ही पकाएगा ना, तो ऐसे एक 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 व्यक्ति एक एक का ही भोजन हो तो फिर मुनि महाराज का क्या पेट भरेगा जिस घर में पहुंच गए, और बाहर से नहीं आएंगे तो हर रोज क्या उनोदर करेंगे? हर रोज क्या उनोदर करेंगे? नहीं, ऐसा उनोदर यति का न हो पाए इस उद्देश्य से सात घरों को छूट दिया है। अगर एक एक व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए भोजन पकाया है और वो अल्प भोजन भी है तो सातों घर के वो एक एक व्यक्ति जिस घर में मुनि महाराज आहार के लिए पहुंच गए हैं, आहार करा के आते हैं, तो वो खुद भी भूखे नहीं रहेंगे और मुनि महाराज को भी भूखे रखने नहीं देंगे। ये सात घर का छूट क्यों है ये चिंतन करो, क्यों है? अगर एक घर में सात व्यक्ति हैं तो बाहर का लेने की जरूरत ही नहीं है। सात घर, घर के सात लोग होना चाहिए और सातों लोगों के लिए शुद्ध भोजन पका हुआ होना चाहिए, तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा अतिथि समीभाग का यदि निकालेंगे तो 10-10% से निकालेंगे तो वो हो जाता है 70%। मुनि महाराज उतना खा नहीं सकते
महाराज जी, इसका और एक उपप्रश्न,
और बाहर से आने की जरूरत नहीं रहती।
वक्त होगा तो और एक उपप्रश्न है।
हाँ हाँ,
कि अपने चातुर्मास में 5 महाराज जी आए हुए हैं।
हाँ,
हमारे घर में एक महाराज जी का पड़गण हुआ है।
हाँ,
और वो चौके में चले गए हैं।
हाँ,
तो अपन दूसरे महाराज जी आएंगे करके अपन बाहर पड़गाड़न के लिए खड़े रह सकते क्या?
खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु समाज का ये विवेक होना चाहिए कि उस घर में 2 मुनि महाराज के लायक अतिथि समीभाग हो सकता है क्या? और यदि नहीं हो सकता है तो समाज का ये विवेक रहता है कि हम वहाँ पर जाने के देने के लिए पहुँच जाएं, बाहर से आकर के वहाँ पर देने के लिए जा सकते हैं और ऐसा देंगे तो मुनि महाराज का उनोदर नहीं होगा, पूर्ण आहार हो जाएगा, तो बाहर से आना बहुत ज़रूरी है।
ठीक,
बहुत ज़रूरी है, वो अति आवश्यक है, कहीं उनोदर न हो पाए मुनि महाराज का, ये भी ध्यान रखना, श्रावक का विवेक है।
जिनके यहाँ महाराज जी चौका लग रहा हो स्वयं, उनके अगर भाई के यहाँ जरा अगर दूर रहते हैं,
हाँ,
अगर उनके भाई के यहाँ कहीं डिलीवरी हो गई हो तो उनके घर में, फिर उनके भाई के घर में या पुसद में वो चौका लगाए तो वो लग सकता है क्या, वो लगा सकते हैं क्या?
देखो, घर बहुत बड़ा हो और वहाँ पर शुद्धिकरण विशेष रूप से पलता हो, निकटता ना हो, तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ हाँ, नहीं वही तो बता रहे ना। हाँ,
जगह अलग अलग, दूर है,
दोनों अलग अलग है ना,
दूरी पर
तो
है।
कोई बात नहीं, घर अगर वो है
दूरी पर है,
बड़ा है और व्यवस्थित रूप से वो उसका कोई संपर्क नहीं है एक दूसरे से कमरों का, तो वहाँ दे सकते हैं। हाँ, घर को सूतक लगता है कि व्यक्ति को सूतक लगता है ये बताओ पहले, सूतक किसको लगता है, व्यक्ति को लगता है क्या, घर को लगता है, कमरों को लगता है, दीवार वगैरह को लगता है? तो यहाँ पर दीवार से मतलब नहीं, कमरों से मतलब नहीं, व्यक्ति को सूतक का पालन करना चाहिए। तो उस घर वाले पालन तो कर रहे हैं, आप आहार करने के लिए एक कमरा मांग रहे हैं तो वह दाता घर वाला कमरा दे सकता है और आप उसको ले करके चौका लगा सकते हैं।
वो घर वाले दे सकते हैं क्या जिनको सूतक पातक लगा हो?
नहीं, सूतक जिसको लग गया है वह घर वाला कमरा देना चाहता है तो दे सकता है और लेने वाला ले सकता है।
आहार
नहीं दे सकेगा, नहीं आहार नहीं दे सकेगा। जिसके घर में प्रत्यक्ष सूतक है वह आहार न दे, देवशास्त्र गुरु का स्पर्श न करे, ये तो नियम पालन करना पड़ेगा। तो
आहार बना सकता है क्या वो?
देखो, आहार बना सकता है, खुद खा सकता है कि नहीं, उपास रहेगा क्या, ये हमारा प्रश्न थोड़ी है। वो खाए उपास रहे ये अलग बात है, लेकिन खुद के लिए पकाया है और सूतक है तो उस आहार को दे नहीं सकता, अतिथि समीभाग नहीं कर सकता जितने दिन तक उनको सूतक होता है।
महाराज, समय हो गए।
हाँ, समय हो गया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी
जग जन मन के मल को धोती अत कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे अब ना हम विषयांध रहे।